Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Pratasmaraniya Shrutriya Brahmanishtha Mahamandalishwara स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए सभा में समुपस्थित आत्मस्वरूप प्रिय आदरणीय मधुबाबू जी तिजोरीवाला जी समस्त भगवान के परम भक्त पवित्र आत्मा साधक जन श्रोता जन बालक नचिकेता एक उज्जवल चरित्र जिज्ञासा के प्रतीक तत्व ज्ञान को पाने की सारी योग्यता उन्होंने तीसरे वर्ग के रूप में आत्मज्ञान मांगा। बालक नचिकेता की मानो परीक्षा लेने के लिए आचार्य यम ने अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन उसके उत्तर में बालक नचिकेता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया, तवैव वाह तव नृत्य गीते। उनके मन में वैराग्य था, वैराग्य के बिना त्याग संभव नहीं है, छोड़ना संभव नहीं है। जहां पर आसक्ति होती है वहां पकड़ना होता है, संग्रह होता है, परिग्रह होता है, और वहीं से जीवन में हमारे संघर्ष शुरू होता है। लेकिन वैराग्य जीवन में हो तो वहां परिग्रह संग्रह संघर्ष आदि की बात नहीं होती है। एक बहुत गंभीर बात उन्होंने कही, श्वो भावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। बालक नचिकेता ने आचार्य यम को कहा, हे अंतक, आप स्वयं अंत करने वाले हैं, संपूर्ण परिवर्तनों के आप साक्षी हैं, संपूर्ण परिवर्तनों के आप केवल साक्षी ही नहीं, आप उसके सृष्टा भी हैं। और उसके बाद भी जो चीजें परिवर्तनशील हैं उन चीजों को आप मेरे को देना चाह रहे हैं, एक प्रकार से ऐसा ही समझ लीजिए जैसे आप कोई चीजें बेच रहे हैं। आपको मालूम है कौन सी चीज नकली कौन सी चीज असली। बहुत सारे मानो खिलौने हैं आपके यहां, आपको पता है वो बच्चा कितना देर तक संभाल सकता है, और आपका ही बेटा आके बोले हमको खिलौना चाहिए, तो आप कौन सा खिलौना उठा के देंगे, जो नकली देंगे कि असली देंगे? क्योंकि आपको मालूम है, भले ही खरीदने वाले को पता ना हो असली कौन सा और नकली कौन सा, लेकिन बेचने वाले को तो मालूम है कहां रखा है असली कौन सा, असली कौन सा नकली। तो पिता हमेशा अपने बच्चे को नकली खिलौना देना नहीं चाहेगा, ज्यादा टिकाऊ मजबूत बहुत अच्छा। आज बालक नचिकेता यही बात कह रहे हैं। आपको मालूम है आपको जितना मालूम है उतना और किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जीवन का जो भी परिवर्तन विनाश आपकी दृष्टि के अंदर होता है, दृष्टि के सामने होता है, आप उसके सृष्टा है और उसके बाद भी दुनिया की चीजें लेने की आप प्रेरणा दे रहे हैं। ये जीवन कितना क्षणिक है ये यम से ज्यादा और कौन जान सकता है, ये दुनिया के पदार्थ कितने क्षणिक हैं ये यम के अलावा और कौन जान सकता है। उसके बाद भी बालक नचिकेता कह रहे हैं कि उन्हीं चीजों को आप मुझे देना चाहते हैं। ये शब्द का प्रयोग किया शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत, जिसका कल तक भरोसा नहीं अगले पल तक भी भरोसा नहीं है। इसलिए गीता जी में इस संसार के पदार्थों के लिए अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी है और वो अश्वत्थ वृक्ष की उपमा बहुत सार्थक है। अश्वत्थ यह तीन शब्द हैं, अ प्लस श्व प्लस था बराबर अश्वत्थ। श्व शब्द का अर्थ होता है जिसकी सत्ता, जिसका अस्तित्व कल तक रह सकता है, निश्चित है, जो वस्तु कल तक रहने वाली है उसको श्वस्थ बोलते हैं। श्वत्थ श्व माने कल तक और था माने रहने वाली, जिसकी स्थिरता है। लेकिन इसके साथ नए तत्पुरुष समाज जुड़ा, अ माने कल तक भी जिसकी स्थिति की स्थिरता नहीं है, जो कल तक भी स्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें संदेह है, उन पदार्थों को कहा जाता है अश्वत्थ। ये संपूर्ण संसार एक अश्वत्थ है, अश्वत्थ का पेड़, पीपल का पेड़ उपमा दी गई। ये नश्वरता का प्रतिपादन करने के लिए ही पंद्रहवां अध्याय है और यहां पर भी वो कहते शोभावा माने जिसका कल तक भाव रहेगा कि नहीं, ये भी कोई निश्चित नहीं है। और ये विषय मिल भी जाए थोड़े समय के लिए, उसके परिणाम का वर्णन कर रहे हैं। जरयंती तेजः इंद्रियाणां, ये हमारे इंद्रियों का तेज खत्म कर देते हैं, ये विषय हमें बुढ़ापे की ओर ले जाते हैं, ये विषय भोग हमें बुढ़ापे में ले जाते हैं। हम भोगते नहीं है, भोग हमको भोगते हैं, ये विषय हमको भोगते हैं। ये बड़ी गहरी बात भर्तृहरि ने कही, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न या तो वयमेव यात। बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने। हमें ऐसा लगता है कि विषयों को हम भोग रहे हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से आप देखेंगे तो विषय हमें भोगते हैं, हम विषयों को नहीं भोगते। हमारी आंख बाहर दुनिया को जितना देखती जाती उतनी इसकी क्षमता, इसकी ऊर्जा कम होती जाती है। आप बोलते हैं ना कि घुटने काम नहीं कर रहे हैं, घुटने काम नहीं कर रहे इसी का मतलब है कि घुटनों ने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा चल चुके हैं, वो घिस गए हैं। हमारी इंद्रियों की भी यही दशा है, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां विषयों के उपयोग करते करते घिसने लगती हैं, अंततः बूढ़ी हो जाती हैं, इसका विनाश होने लगता है। इसके विनाश का मूल बालक नचिकेता ने कहा ये विषय बाहर के पदार्थ हैं, जो विषय हमें बुढ़ापे की ओर ले जाते हैं, जो विषय हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। बोले उन विषयों को आप हमको देना चाहते हैं। अंत में अपना निर्णय उन्होंने सुना दिया, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेवा, मेरा जीवन भी अल्प है और जिन पदार्थों को आप देना चाहते हैं उन पदार्थों का भी अस्तित्व बहुत न्यून है, इसलिए न्यून अस्तित्व वाले पदार्थ, क्षणिक जीवन वाला व्यक्ति मैं लेके क्या करूं, मुझे तो अनिश्वर शाश्वत सत्य निरंतर जो आत्म तत्व है उसका उपदेश कीजिए। और अंतिम वाक्य उन्होंने लगता है थोड़ा सा रोष में जैसे बोला है, तवई वाहा तव नृत्य गीते, तुम्हारे वाहन ये तुम्हारे नृत्य भोग विलास की चीजों के लिए प्रयोग किया, तुम्हारे वाहन तुम्हारे संगीत गीत खान पान आमोद प्रमोद ये समृद्धि ये राज्य वैभव बोले तुम्हारे पास रखो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जिसके बाद फिर कुछ करना होता नहीं है। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, बालक नचिकेता को आचार्य यम ने कहा कि तुम बहुत सारा धन ले लो, फिर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि तुम बहुत सारा धन ले लो, बोले न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, कितना भी धन मिल जाए तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। बोले धन के द्वारा संतोष मिलेगा, पूछा उन्होंने क्या आचार्य यम कह सकते क्या, नहीं। जो मैत्री और गार्गी का जो संवाद है ना बड़ा महत्वपूर्ण है, कात्यायनी याज्ञवल्की की दो पत्नियां हैं मैत्री और गार्गी की, कात्यायनी है कात्यायनी और मैत्री, वह कितनी समझ का भेद है, कात्यायनी और मैत्री दो पत्नियां हैं याज्ञवल्की की और याज्ञवल्क्य संन्यास लेने की तैयारियों में है, संन्यास लेना चाहते, दो पत्नियां हैं संन्यास लेने की तैयारी हैं। बड़े ऋषि अद्भुत थे प्राचीन समय के लोग, बड़े अद्भुत थे, उन्होंने सोचा कि संन्यास लेना है, दो पत्नियां हैं और वो कोई सामान्य ऋषि नहीं है, गुरुकुल चलाते हैं, सैकड़ों विद्यार्थी हैं, संपत्ति है, बड़े बड़े आश्रम हैं, सारी चीजें हैं, भोग विलास की सारी चीजें उनके आश्रम में विराजमान है। उन्होंने सोचा कि दोनों का बंटवारा कर दूं, बाद में झगड़ा न हो जाए, बंटवारा करने जा रहे हैं। कात्यायनी बहुत प्रसन्न हो गई, कात्यायनी ने सोचा कि संन्यास तो ले ही रहे हैं लेकिन बाद में हम दोनों में झगड़ा न हो जाए, संपत्ति को लेकर खान पान को लेकर, मानो कि वो सोची रही थी वो बंटवारा हो जाए। जब ऋषि के मन की बात प्रकट हो गई बहुत प्रसन्न हो गई वो, बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन जब मैत्री के सामने बात रखी ऋषि ने, उनके मन में एक प्रश्न उठा, बहुत गहरा प्रश्न, और अक्सर ये प्रश्न हमारे मन में नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि आप संन्यास लेने के लिए जिसका त्याग कर रहे हैं, जिस संपत्ति का त्याग कर रहे हैं, क्या उस संपत्ति को लेकर मैं शांति को प्राप्त कर सकती हूं? बहुत गहरी बात बोली उन्होंने, जिस आप धन का इस वैभव का ऐश्वर्य का परित्याग कर रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं और हमको दे रहे हैं, आज तक आपको शांति मिली होती इस धन वैभव संपत्ति से तो आप त्याग की बात नहीं करते, पूछा उन्होंने, इसका उत्तर उन्होंने यही दिया याज्ञवल्क्य ने, बोले नहीं देवी, इन संपूर्ण धन वैभव पाने के बाद भी मेरे को शांति नहीं मिली और संभावना भी दिखती नहीं है। संभावना भी दिखती नहीं कि इस वैभव को पाने के बाद शांति मिलेगी। फिर उन्होंने बोला कि इसको लेकर मैं क्या करूंगी। फिर मैत्री ने बोला, जिसको पाने के बाद मेरे को शांति नहीं मिलेगी, ये निश्चित सत्य है, अनुभूत सत्य है, आपके जीवन का अनुभव है, इन चीजों को पाने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, ये आपके जीवन का अनुभव है और आपका सन्यास अनुभूति से निकला हुआ सन्यास है, ये वैराग्य अज्ञान पूर्वक नहीं है या भावावेश का वैराग्य नहीं है। कोई परिस्थितियां देखकर पैदा हुआ भी वैराग्य नहीं है, ठोक पीट कर समझ कर अनुभव के स्तर पर जाकर आप ये बात कह रहे हैं। हमारे जीवन में भी दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक अनुभूत वैराग्य और दूसरा परिस्थिति जन्य। परिस्थिति से भी वैराग्य होता है, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद भोजन से वैराग्य होता है, ये वास्तविक वैराग्य नहीं है, उस वैराग्य में भी आसक्ति है, छिपी हुई आसक्ति है। हम भले ही कह दें ये भोजन हमको नहीं चाहिए, बस बस ले जाओ, त्याग कर देते हैं। बहुत स्वादिष्ट भोजन भी जो प्रिय है, भोजन के बाद आप उसको लौटा देते हैं, बहुत तिरस्कारपूर्ण हटा देते हैं, उसको वैराग्य नहीं बोलते हैं, उस तिरस्कार में भी एक आसक्ति जुड़ी हुई है, उस वैराग्य में भी आसक्ति के बीज विद्यमान है। भोग के बाद व्यक्ति को क्षणिक वैराग्य पैदा होता है, व्यक्ति में आ जाता है वैराग्य का अभाव, लेकिन उस वैराग्य में भी आसक्ति के बीज होते हैं। परिस्थिति है, भोग भी एक परिस्थिति है, परिस्थिति जन्य वैराग्य। कभी कभी हताशा में भी वैराग्य आ जाते हैं, ऐसा दुनिया में आदमी खोजना मुश्किल जिन्होंने अपने पत्नी को कभी ये बात नहीं कही हो, हम सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे। कम से कम आध्यात्मिक जो भी व्यक्ति होगा उसने अपनी पत्नी को जरूर बोला होगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और बहुत सारी माताओं ने भी बोला होगा हम छोड़ के चले जाएंगे। ये वैराग्य तो है जरूर, लेकिन इस वैराग्य में आसक्ति के बीज हैं, और यही कारण है कि हम छोड़ते हुए या छोड़ना चाहते हुए भी अथवा छोड़ते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य का जो वैराग्य है वो ज्ञान गर्भ वैराग्य, ज्ञान जन्य वैराग्य, परिस्थिति जन्य वैराग्य नहीं है। उन्होंने देखा है, शास्त्र की बात को जीवन में उतार के देखा है, जाना है। ये दुनिया के पदार्थ हमें स्थायी शांति देने में समर्थ नहीं है। हम कितने बार खाए हैं, कितने बार भोग भोगा, लेकिन कभी अपने को ऐसा लगा क्या कि पर्याप्त हो गया? कभी नहीं। ये बाहर के पदार्थ हमें कभी भी शांति में नहीं ले जा सकते हैं। सत्य है, शाश्वत सत्य है। आज मैत्री यही कह रही है, आपके जीवन में वैराग्य है, आपने अनुभव किया है, जिन भौतिक पदार्थों का आप विभाजन कर हम दोनों में बांटना चाहते हैं, क्यों बांटना चाहते हैं, आप हमको देना क्यों चाहते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, ये बात जो मैत्री के मन में आए बहुत गहरी बात आ गई। आप जो हमको दे रहे हैं, बोले इससे हमको शांति मिलेगी, आप स्वयं इसका परित्याग कर शांति की खोज में वन में जाना चाहते हैं और वही चीजें आप हमको देना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई वैद्य आपको दवा दे रहा हो और उस वैद्य को भी भरोसा हो कि ये दवा मेरे ऊपर काम नहीं करती है, स्वयं उसके जीवन का अनुभव है ये दवा काम करने वाली नहीं है, इस रोग की दवा ही नहीं, और उसके बाद भी वो दवा दे रहा हो वैद्य रोगी को, बोले बात तो ऐसी मालूम पड़ती है। उनके भीतर भी वैराग्य उदित हो गया और उन्होंने यही कहा, जो चीज आपको शांति देने में समर्थ नहीं है, बोले उसको लेकर के मैं क्या करूं। बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश आप कीजिए और आपके साथ में रहूंगी, फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप संन्यास लीजिए, आपके साथ रहूंगी, आपके संन्यास में मैं आपको साथ दूंगी। और हुआ ऐसे ही, संपत्ति तो कात्यायनी को मिली और ज्ञान मैत्री को मिला। अविनाशवा, अरे अयम आत्मा मैत्री, बहुत उच्च कोटि का उपदेश याज्ञवल्क्य ने मैत्री को किया। त्याग के बिना उन्होंने कहा, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। आज यही बात बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप वित्तम नाशास्ति अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन, बहुत गहरी बात बोली उन्होंने, बोले अमृतत्व का नाश होता है धन से, बड़ी कठोर बात बोली उन्होंने, बहुत कठोर बात बोली। अमृतत्व आत्मा, अमृतत्व शांति, अमृतत्व सुख, बोले जितना धन का संकलन होता जाता है उतना व्यक्ति बहिर्मुख होता जाता है, बाह्य पदार्थों पर भरोसे बढ़ते जाते, विश्वास बढ़ते जाते, आशाएं जगती जाती, हम बहुत सारी चीजों को खरीदने लगते, हमारा चित्त संग्रही परिग्रही बनता जाता है और आत्मसत्ता से भटकने लगता है, बहिर्मुख होता जाता है। बात भी सत्य है, ये संग्रहशील व्यक्ति का चित्त संग्रहों में परिग्रहों में लगा रहता है, हम चिंतन मनन नहीं कर पाते, आत्मा के बारे में अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं, हम आंख बंद करके बैठे तो बाहर की दुनिया के बारे में सोचेंगे, संग्रह विग्रह के बारे में सोचेंगे। बालक नचिकेता ने भी कहा, बोले सारी चीजें ये मेरी चिकित्सा नहीं है, ये सारी चीजें मेरी दवा नहीं है, यस्मिन निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योयम् वरो गूढ़ मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मात् नचिकेतो वृणीते। अंत में उन्होंने कहा कि भगवान आपको केवल एक चीज आप देनी पड़ेगी, उन्होंने कहा भैया देवैरत्राप विचिकित्सितम् पुरा, ऐसा शब्द का प्रयोग किया आचार्यम ने। आचार्यम ने कहा कि तुम जो पूछ रहे हो, चलो मान लो कि तुम्हारी आकांक्षा तुम्हारी जिज्ञासा है, तुम केवल वही तत्व पाना चाहते हो आत्म तत्व, लेकिन बोले बहुत कठिन है, गूढ़ है, देवताओं ने भी उसके ऊपर विचार विमर्श किया लेकिन देवताओं को नहीं मिला वो, इतना कठिन है। और बोले उसको लेके क्या करोगे तुम, जो देवता भी समझ नहीं पाए, बोले तुम कैसे समझ पाओगे। जितना आचार्य बालक नचिकेता को बोलते गए ना, उतना ही उनका विश्वास बढ़ता गया। उन्होंने कहा नान्यम تم کو چھوڑ کر اور کوئی دنیا میں ایسا وقتا میرے کو ملنے والا نہیں. بولے ایسا دیوتا لوگوں نے بھی وچار کیا اس پر, دیوتا لوگوں نے بھی پانا چاہا اس کو, تو بولے اس کا ارتھ یہی ہوا کہ اور مہتوپورن ہونا چاہیے. دیوتاؤں کو بھی نہیں ملا اس کا مطلب یہ اور درلبھ ہو گیا, یہ تو اور مہتوپورن اور درلبھ چیز ہو گئی. اب بولے میرے کو یہی چیز چاہیے, اتنی اچھی اتنی دیو درلبھ. دوسرے ولی میں اب وہ پرشنسا کرنے لگے, بہت سندر ہے دوسرا دوسری ولی. اور دوسری ولی کا پرتھم منتر انیچھیو انیدتیو پریہ ستے اُبھے نانا پورشم سینیتہ تیو شریہ آددانسے سادور بھوتی کھیتے ارتھادیا او پریو ورنیتے. بالک نچکیتا کی اب پرشنسا کر رہے ہیں, جہاں بھی شریشتھتا اور کنشتھتا کا ورنن ہوتا ہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی بڑی. یہ دویت کی چیزیں ادویت میں نہیں ہوتی ہیں. اور یہاں دو چیزوں کو سامنے پرستوت کر رہے ہیں. بھلے دنیا میں دو مارگ ہیں, ایک شریہ مارگ اور دوسرا پریہ مارگ, اور ان دونوں مارگوں کو یہ دونوں راہی ہیں الگ الگ. شریہ مارگ مانے موکش کا مارگ, شریہ مارگ مانے شریشٹھ مارگ, آتما کا مارگ, نیورتی مارگ, ویراگیہ کا مارگ, اور پریہ مانے من کو پریہ لگنے والا مارگ, بھوگ کا مارگ, سنسار کا مارگ, پرورتی کا مارگ, آسکتی کا مارگ. اور آسکتی کا مارگ من کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کسی کے گھر پر گئے اور وہ سامنے والا بولے آؤ بیٹھو کھاؤ پیو, بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پروس دیتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. یہ بھوگ کا مارگ ہے, من کو پریہ لگنے والا مارگ ہے. تتکشن آنکھ کھلی اور وشیوں کے ساتھ ہماری آنکھ جڑی, ہمیں دیکھ کے سوندری بودھ ہوتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. کان سے سننے کے بعد ہمیں شبد سکھد آلہاد دینا شروع کر دیتے ہیں, وہاں کوئی ولمب نہیں ہے. جیسے ہم اپنے مکھ میں گراس رکھتے ہیں ویسے ہی وہ آنند دینا شروع کر دیتا ہے, وہاں کوئی ولمب تھوڑی ہے. یہ دنیا کے پدارتھ ہمیں تتکشن سکھ میں لے جاتے ہیں. بڑے پریہ ماں بڑے پریہ ہیں, یہ بڑے پریہ ہیں, یہ پریہ ہیں. پریہ مانے من کو پریہ لگنے والے, اندریوں کو پریہ لگنے والے. یہ دنیا کے پدارتھ ہیں, یہ بھوگ کے مارگ ہیں. لیکن چھوڑنے کا مارگ ساکشات بھوگ آپ کے سامنے ہے, اس کو چھوڑنا ہے. نیورتی مارگ ہیں, چھوڑنے کا مارگ, ویراگیہ کا مارگ. یہ دو مارگ ہیں, دونوں مارگوں پر الگ الگ سادھک چلتے ہیں. انہیں کا تے نانارتھ پرشم سینیتا, اور یہ دونوں مارگ آکرشت کرتے ہیں. ویراگیہ کا مارگ بھی آکرشت کرتا ہے اور وشیوں کا مارگ بھی آکرشت کرتا ہے. केवल ये दुनिया के भौतिक पदार्थ ही हमें आकर्षित करते हैं ऐसा नहीं है, हमें वैराग्य भी आकर्षित करता है. बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो वैराग्य से आकर्षित होते हैं. आप भर्तृहरि को पढ़ना, भर्तृहरि बार बार बोलते हैं हे प्रभु वो क्षण कब आएगा जब मैं वैराग्य धारण कर वन के किसी पेड़ पौधे के नीचे बैठा रहूं और भगवान की चर्चा करूं, भगवान का भजन करूं. ऐसा वो क्षण कब आए. मैं समाधि में बैठा हूं, सर्वस्व का परित्याग कर वन के किसी पेड़ के नीचे, और कोई हिरण आके मेरी पीठ खुजला दे, इतना मैं अहिंसक बन जाऊं. सच्चा साधक वैराग्य के स्वप्न देखता है, वैराग्य उसको आकर्षित करता है कि ध्रुव का जो मार्ग है वैराग्य का मार्ग है, कितना आकर्षक